प्ले हो जाएगा, शुरू हो गए।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय
जनारंजना Thank you.
श्री राधा गिरि भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री प्रभुपाद की। श्री वसुदेव उवाच। श्री वसुदेव ने कहा ना नहीं ही निसंदेह अस्य इससे देवकी से ते तुम्हारा भयम् भय सम्य हे शालिन यत जो ये निसंदेह सा वो आह बोली और शरीर बिना शरीर के वाणी पुत्र अपने सारे पुत्रों को समर्पय तुम्हें सौंप दूंगा अच्छा इस देवकी के यत जिससे ते तुम्हारा भयम भय उत्थितम उत्पन्न हुआ है। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट डिवाइन जी के द्वारा श्री वसुदेव ने कहा हे सौम्य तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है इसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उनके पुत्र होंगे अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। तत्परी कंस को देवकी से भय था कि उसके आठवें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका वध करेगा। इसलिए वसुदेव ने अपने साले को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि वो सारे पुत्रों को लाकर उसे दे दिया करेगा। आठवें पुत्र की प्रतीक्षा न करके वो प्रारंभ से ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देगा। वसुदेव ने कंस के समक्ष यह सबसे उदार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ओम ज्ञान अधिनिरंजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदायम ददाति स्वपदांतिकम् वंदेऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीसखानितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते दत्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृतवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो श्री शुक्लदेव गोस्वामी के द्वारा श्री वसुदेव के मुख कमल से जो अपने साले को एक प्रकार आश्वासन दिया जा रहा है और उनके साले कंस जो था और अपने मृत्यु को, मृत्यु का चेतावनी ऐसे कहीं किधर सुन लिया, आकाश से सुन लिया और सुन करके भयभीत है, उसको डर हो गया है, मेरा मृत्यु मेरे बहन के पुत्र देवकी के जो पुत्र हैं उनके हाथ में है, जिनको मैं इतना मेरे जीवन से भी अधिक प्रेम कर रहा हूँ, तो उनके हाथ में, उनके बच्चों के हाथ में मेरा मृत्यु होगी। ये बात को जब कंस सुना आकाश से ऊपर से, तो वो बदबद अपने मृत्यु के विषय में बड़े चिंतित हो गया। और जब मृत्यु के विषय में कोई व्यक्ति चिंतित होता है, मृत्यु का चेतावनी, मृत्यु की आवाज़ उनके जीवन में आती है, तो फिर अपने धैर्य धीरज को खो बैठता है और सही निष्पत्ति नहीं ले पाता है। मृत्यु के समय में मुझे क्या करना है, ये सारे बद्ध जीवों का एक कमजोरी है। बद्ध जीव तो ऐसे बद्ध है और मृत्यु के समय और अपने जो मानसिक संतुलन है, मानसिक भारसम्य है, तो ऐसे खो बैठता है। ऐसे तो बद्ध अवस्था में हमें खो बैठते ही है, क्योंकि भगवान का भक्ति जब तक हृदय में नहीं होती है, हमारा मानसिक स्थिरता नहीं आ पाती है। तो ऐसे तो वो असुर था, राक्षस स्वभाव के थे, था भले वो अपने परिवार के कितना भी प्रेम दिखाए, अपने परिवार के प्रति प्रेम प्रकट करें, ये था असुर। तो असुर होने के नाते उनका बुद्धि हमेशा विचलित रहता था, भोग में जिसका बुद्धि रहती है तो उनका बुद्धि कभी स्थिर नहीं होता है और वो सही निष्पत्ति नहीं ले पाता है। तो वही यही बातें कंस जैसे राक्षस के जीवन में देखती है, अति प्रेम कर रहा था देवकी को, ऐसे कि ये प्रेम के कारण वो ड्राइवरी का काम कर रहा, ड्राइवर भी बन गया और ले जा रहा था अपने बहन को अपने ससुराल में छोड़ने के लिए। अचानक की विधि का विधान को कोई उल्टा नहीं कर सकता, क्योंकि कंस ऐसे पहले से राक्षस स्वभाव का व्यक्ति था, तो सारे जगत के जो लोग हैं वो दुखी थे उनके उत्पात से, क्योंकि जब व्यक्ति शास्त्र के विधान को नहीं मानता तो फिर वो सबका दुख का कारण बन जाता। ये बात भी प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्री विधि बिना ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पात। जब शास्त्र का मर्यादा को तोड़ दिया जाता है, जो शास्त्र का विधि विधान को कोई उल्लंघन कर देता है, तो वो व्यक्ति समाज का केवल उत्पात की कारण बनता है। तो ले जा रहा था अपने बहन को देवकी को, अचानक मृत के खबर उनके कान में आ पहुंचा, तो तुरंत तो अपने बहन देवकी को वो मारने के लिए अपने हथियार निकाल लिया। यही है भौतिक संसार की कुत्सित प्रेम। प्रेम तो है, लेकिन कैसे, इतने एक मिनट पहले वो इतना प्रेम कर रहा था, लेकिन जैसे अपने मृत्यु की खबर पाया तो तुरंत वो जिसको प्रेम कर रहा था उसी को ही वध करने के लिए वो प्रस्तुत हो गया। ये भौतिक जगत की ये प्रेम का नतीजा है, परिणाम है। ये भौतिक जगत में जो प्रेम दिखाई पड़ती है ये प्रेम नहीं, ये काम है। ये भौतिक जगत में जो भी कुछ प्रेम है वो प्रेम नहीं है, क्योंकि शरीर के स्तर पर जो प्रेम होती है वो प्रेम नहीं होती है, वो काम होती है। आत्मा के स्तर पर जो प्रेम होती है वो दिव्य होती है, वो पवित्र होती है, शुद्ध होती है। लेकिन शरीर के स्तर पर कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर के स्तर पर स्वार्थ रहती है, नहीं रहते हैं। जो शरीर के स्तर पर जो प्रेम किया जाता है उसका बीच में हमारा शरीर स्वार्थ रहती है। कृष्ण यदि स्वार्थ में नहीं है, शरीर कृष्ण यदि बीच में नहीं है, वो प्रेम नहीं है, काम है। तो ये राक्षस था, असुरी स्वभाव के व्यक्ति था, तो कहाँ उनके भीतर आत्मा को समझने की शक्ति आएगी, वो शरीर के स्तर पर था। तो ये दिखा जाती है, तो वहां पर यही आज के प्रसंग के द्वारा एक चेतावनी दिया जा रही है। यदि हमारा अर्थ इस श्लोकों के द्वारा, पिछले शनिवार को भी मेरा ऐसा ही श्लोक था, जो श्लोक में जो सारांश था, जो सार वस्तु था, भय और ये भौतिक जगत में कहीं पर सुरक्षा की एक हमें भरोसा नहीं मिलती है। हर जगह में एक प्रकार का भय की लगभग वार्निंग दिया जाती है, पदम पदम भी पदम, हर पद में, हर बातों में यहाँ पर एक खतरा की चुनौती देना पड़ती है ये जगत में जो लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आज के प्रसंग के द्वारा यही बात लिखी जाती है। हमें पहले कई श्लोकों से हमें देख रहे हैं कि भय, मृत्यु रूपी भय, उनको कैसे मुकाबला किया जाए, उसका सामना कैसे किया जाए, उसका सार उसमें शास्त्रों के द्वारा हमें एक ही हमारे सामने आती है, वो है भगवान के भक्ति। ये भय को हमें टालना है, भय को हमें रोकना है, भय का सामना करना है, तो एक ही मात्र उपाय है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति को छोड़कर हमें कितने भी उपाय मना लें, कितने भी उपाय हमें बना लें, तो वो उपाय के द्वारा हमें भय से मुक्त तो नहीं हो सकते। केवल भगवान के चरण के प्रति हमारा भक्ति जो है, ये भक्ति के द्वारा हमें भय को जीत सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। अभय चरणारविंद है, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन है। यदि हमें भय से भक्ति, भय से मुक्त होना चाहते हैं, केवल भगवान के प्रति भक्ति करेंगे तो भय को हमें पार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उनके प्रवचन में एक बार एक आदमी का कहानी विषय कह रहे थे। तो एक व्यक्ति था, वो सड़क में जा रहा था, तो जा रहा था अचानक उनके नजर एक तुम्बी के ऊपर गया तो वो तुम्बी को उठा लिया, वो व्यक्ति वो तुम्बी को उठा लिया और आगे जा रहा था देखा एक लकड़ा है और एक तार है, तो वो लकड़ा और तार को भी उठा लिया। लेकिन वो व्यक्ति ये तीनों चीजों को उठाने के पहले वो स्वयं अपने अपने से बेकार थे। ये तुम्बी भी बेकार था, लकड़ा भी बेकार था और तार भी था। तो वो व्यक्ति ने तीनों चीजों को उठा लिया, उठा करके उनको बना लिया, तुम्बी, तार और लकड़ा, तो तीनों को बना लिया। जब जैसे बना दिया, वो एक बहुत सुंदर वीणा बन गया। वीणा समझते हैं ना, बजाते हैं, हाँ। जब वीणा बन गया, तीनों चीज तुम्बी, लकड़ा और तार, ये तीनों चीजों को लगाकर जब एक वीणा बना लिया, एक वीणा से एक मधुर संगीत निकलने लगी। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने जो पश्चिम में पहुंचे, देखें कि कुछ उपेक्षित युवक जो युवकों को अपने परिवार त्याग दिया, ऐसे उपेक्षित युवक ऐसे भटक रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे भटके हुए, ऐसे वहां यहाँ भटकने वाले उपेक्षित युवकों को अपने साथ में कर लिए और साथ करके उन्हें केवल कृष्ण भावनामृत में जोड़ दिए। जैसे ये बिखरे हुए तुम्बी, तार, लकड़े बिखरे हुए पड़े थे अलग अलग, कोई किसी का साथ संबंध नहीं था, ऐसे वस्तुओं को जोड़ करके वो व्यक्ति यदि मधुर संगीत उत्पन्न कर पाया, तो प्रभुपाद जी ने सोचा मैं क्यों ये उपेक्षित युवकों को, इधर उधर घूमने वाले उपेक्षित युवक को कृष्ण भावनामृत में जोड़ करके उनके भीतर के आनंद का है कि आनंद उत्पन्न नहीं करा दूं। मतलब भय से मैं ये भौतिक संसार के भय से कैसे उनको पार करूं, मैं क्यों उन लोगों को पार करना दूं। तो प्रभुपाद जी ने यही किए, ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत, केवल कृष्ण भावनामृत में जोड़ दिए बस। वो सारे प्रकार मानसिक, शारीरिक और जितने प्रकार की बौद्धिक संसार की कष्ट है, वो सारे प्रकार कष्ट से केवल कृष्ण भावनामृत जोड़ने मात्र से ही हल होती है। ये बौद्धिक संसार में जितने सारी प्रकार के कष्ट है, दुख है, यंत्रणा है हमारे जीवन में, खास करके बद्ध जीवों के जीवन में, वो सारे प्रकार अवस्था से शांत क्या है, शांत हमें कहाँ हो सकते हैं, न केवल कृष्ण भावनामृत। अब प्रभुपाद ने यही कर दिखाया, भौतिक संसार में बद्ध जीवों को भौतिक कष्टों से उबारने के लिए केवल यही किए। अमेरिका जैसे जगह में क्या किए, केवल जाके करताल लेकर के हरे कृष्ण मंत्र गाए, और ये हरे कृष्ण मंत्र के पीछे वो अपने हृदय की पवित्रता और कृष्ण के प्रति जो आकर्षण, कृष्ण के प्रति जो भक्ति प्रेम, ये प्रेम को जोड़ दिए। हरे कृष्ण मंत्र गाए, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र के पीछे प्रभुपाद जी ऐड क्या कर दिए, ना कृष्ण के प्रति अपनी जो शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति ही हमारे भीतर और कुछ औकात नहीं है बद्ध जीव को कृष्ण को और मोड़ने के लिए, केवल इतना ही हमारे पास कर सकते हैं। हमारे हृदय के भीतर कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, पवित्र भक्ति है, ये भक्ति ही बद्ध जीव को कृष्ण की ओर ला सकता है। हमारे ज्ञान, ध्यान, जप, तप, व्रत, ये सब कुछ इतना काम नहीं आ सकता जितना कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति काम आती है। तो प्रभुपाद जी से 70 साल व्यक्ति को अमेरिका जैसे जगह में कौन पूछने वाला था, लेकिन प्रभुपाद जी के हृदय के भीतर संपत्ति क्या था, न कृष्ण के प्रति जो पवित्र आकर्षण है, ये आकर्षण ही ये सारे ऐसे ऐसे बद्ध जीव को उधार करने के लिए सक्षम हो पाया। तो हमें ये भी देखते हैं, मैं पिछले शनिवार को भी बताया था, लेकिन ये बातों को सही रूप में मैं बता नहीं पाया। तो ये संसार में ऐसे कुछ लोग होते हैं, भोग भी करते हैं और मुक्त होना भी चाहते हैं। तो गांव में हमें देखे हैं, जब बंदरियां कोई बंदर को पकड़ना चाहता है तो वो मटका के भीतर कुछ चना डाल देता है, और वो बंदर वो चना को खाने के लिए अपने हाथ को सीधा घुसाता है, सीधा। हाँ, तो घुसाने के बाद वो मटका के भीतर जो चना है उनका हाथ में पकड़ता है, और पकड़ करके वो हाथ को निकालना चाहता है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार के भीतर बद्ध जीव कुछ वस्तुओं के साथ अपने नाता लिया है, कुछ संबंध जोड़ लिया है, ये संबंध कुछ हमारे जीवन में कुछ वस्तु आ गए। ये भौतिक संसार में बद्ध जीव कुछ वस्तुओं के साथ हो गया है, इसके कारण वो भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो पाता। बंदर जैसी वो हाथ को छोड़ देता, खुला कर देता, तो आसानी से भाग निकल सकता था, बंदरिया के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ठीक उसी प्रकार यदि हमें संसार को छोड़ देंगे, यदि हमें संसार के कुछ वस्तु हमारे जीवन में आए, वस्तु को हमारे जीवन से निकाल देंगे, तो हमें आसानी से भाग चले जा सकते हैं। लेकिन हमें इसीलिए अटके हैं, इसीलिए वो संसार में बंधे हुए हैं ना, जो वस्तु हमारे जीवन में है उसी को हमें छोड़ नहीं पाते। भक्ति सिद्धांत स्वामी बताते हैं कि ये भौतिक जगत में कहीं पर सुरक्षा नहीं है, हर जगह में एक प्रकार का विपत्ति बनी हुई है। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो आप जब ट्रेन में जाते हो तो आपने अटैच लगेज आपके साथ जो भी कुछ लेके गए हो, आप उनको चैन लगाते हो, चाबी लगाते हो, और चाबी लगा कर सोते हो, और बीच बीच में उड़ करके आप देखते हो मेरा अटैच है कि नहीं, मेरा जो लगेज वो है कि नहीं, और कभी कभी उड़ करके पकेट को भी देखते हो, मेरा पकेट में जो पैसा है कि नहीं। मतलब क्या है, जो जगह में वो व्यक्ति है वो सुरक्षित जगह नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार जो जगह में हमें रह रहे हैं वो सुरक्षित जगह नहीं है, ये हमेशा भय बनी रहती है। आज के ये प्रसंग के द्वारा वसुदेव जी कह रहे हैं कंस को जो डर है, खाली कंस को डर नहीं है, हर बद्ध जीव यहाँ पर भयभीत है। बद्ध जीव हर समय डरा हुआ रहता, जब तक भक्ति नहीं करेगा वो हमेशा डरेगा। भय क्या है, भय का प्रतीक है मृत्यु, और हर व्यक्ति संसार में मृत्यु के द्वारा भयभीत है। ये मृत्यु रूपी भय को हमें हमारा जीवन से कैसे निकाले, आत्मा होने शाश्वत होने के नाते भय नहीं करना चाहिए, किंतु आत्मा आज सकाम कर्म में होने के नाते तो आज भयभीत है, डरा हुआ है। तो इसी के कारण आज जैसे वो व्यक्ति अपने घर में पहुंच जाता, ट्रेन में जब रहता है तो डरा हुआ रहता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति अपने घर में पहुंच जाए, आर्टिस्ट को लाया किधर फेंक दिया, और कुछ सामान को लिया किधर फेंक दिया, ताला लगाना जरूरत नहीं हुआ, कुछ करना जरूरत नहीं हुआ, वो आराम करके शांति से सो गया। ठीक उसी प्रकार यदि हमें हमारा वासस्थान में पहुंच जाए, हमारा असल घर में पहुंच जाए, वहां पर कोई प्रकार की भय नहीं है। ट्रेन में जब जिस प्रकार भय हो रहा था, जब व्यक्ति अपना घर में आया कोई प्रकार भय नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार हमें यह भगवान का अंश होने के नाते भगवान कहते हैं ये आपका घर जो है वैकुंठ है, भगवत धाम हमारा घर है। जब वो घर में पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमारा घर में, अपने घर में जब पहुंच जाते हैं, जिस व्यक्ति अपना घर में पहुंच जाता है तो कोई प्रकार डर नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार हमें जब अपने घर में भगवान का धाम में पहुंच जाते हैं तो वहां पर कोई प्रकार की भय नहीं है, कोई प्रकार की अशांति, कोई प्रकार का दुख नहीं है। एक बार रथ यात्रा थी इस्कन के, ये बाहर देश की बात है, तो इनके माता जी ने फरेन की थी, तो आई थी रथ यात्रा अटेंड करने के लिए, और रथ यात्रा अटेंड करके वो जा रही थी, रथ यात्रा उस सब हो करके वो जाते जाते बहुत लेट नाइट, बहुत रात अधिक हो गई थी, वो जा रही थी अचानक गाड़ी ड्राइविंग करके जा रही थी, अचानक रास्ता के बीच में कुछ ऐसे कुछ गुंडे लोग आ गए, और फरेंद में बाहर में क्या है, ऐसे कॉमन है, साधारण है कुछ किसी को ऐसा ऐसा करना। तो अचानक माता जी के सामने कुछ गुंडे लोग आ गए, तो माता जी ने देख लिए, वो समझ गए कि ये कुछ ऐसे लोग है, तो डर गए, डरते गाड़ी ड्राइविंग करके वो जा रहे, आगे बढ़ रही है, और गुंडे लोग सामने खड़े हैं, और तो गुंडे के सामने माता जी ने अपने गाड़ी को रोक दिया। और रुकने के बाद देखे चारों तरफ उनके गाड़ी के चारों तरफ वो गुंडे लोग कबड़ कर गए, चारों तरफ हो गए। तो उस अवस्था में गाड़ी की अकेली बैठी है, और क्या करें, तो गाड़ी के भीतर अकेले, और वो बाहर से वो गुंडे लोग गाड़ी को पीट रहे हैं, बाहर निकलो पीट रहे हैं, और अब अंदर वो अकेले बैठी है। तो अंदर अकेले के बैठे वो स्मरण किए, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो करके गए थे, तो गाड़ी के भीतर बैठे बैठे वो जगन्नाथ और बलदेव दोनों को स्मरण किए कि आप इस हालत में आप ही यहाँ पर कुछ कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पर कुछ हाथ लगाइए, हाथ बढ़ाइए, नहीं तो ये अवस्था में मैं तो जैसे इतना ही प्रार्थना करके स्मरण किए जगन्नाथ और बलदेव को, तुरंत वहां पर एक बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े दो पुलिस वाले, दो लंबे चौड़े मोटे तागड़े वहां पर आके पहुंच गए। तो ये गुंडे लोग सोचे, अरे ये पुलिस कहाँ पे आ गए, ये अंदर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, बुला लिया। तो जैसे वो दोनों लंबे चौड़े मोटे पुलिस को देखे, तुरंत गुंडे लोग भाग चले गए। जब भाग चले जाने के बाद वो जो गाड़ी के तरफ बैठी थी, तो गाड़ी के बाहर आए, आ करके देखे, अरे ये जो दो पुलिस भी आए थे वो कहाँ चले गए। तो वो देखने की इच्छा करके गाड़ी के बाहर से निकले कि दोनों पुलिस कौन है, मैं तो बोला है नहीं किसी को। तो जब बाहर आए तो देखे वो पुलिस दोनों भी गायब हो गए। तो वो समझ गए कि और कोई नहीं है, ये जगन्नाथ और बलदेव दोनों है जिनको मैं याद कर रहा था, तो वही दोनों यहाँ पर आ पहुंचे हैं। तो यहाँ पर यही है, जहाँ भी बुद्धि संसार में कुछ भी हमारा जीवन में पाना है, कुछ भी हमें भय से मुक्त भी होना है, अकाम सर्व काम मोख काम उदार भक्ति, बस यही करना है। और ज्ञान कर्म ध्यान योग ये प्रोसेस के ये विधि के द्वारा हमें कुछ कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं, उनका कोई समाधान है ही नहीं ये प्रक्रिया के द्वारा। कलयुग में 5000 साल पहले भी अर्जुन ने ही कहा कि और कुछ काम नहीं होगा, केवल भक्ति, केवल भगवान के प्रति जो भक्ति है वही हमारे जीवन का समस्या को भौतिक जगत में रहते हुए समाधान कर सकते हैं। यही हमारा हाथ में दिखती है। तो महानिधि स्वामी एक बार एक बात बता रहे थे, कैसे पति जी के भीतर जो अनेक समयों से जो डर बैठा हुआ है, और हर समय उनको डरा रहा है, कई कई शरीर में उनको घुमा रहा है, आज संसार की भोग वासना बद्ध जीव के भीतर इतने ऐसे प्रबल है, इतने प्रबल है, तो होता नहीं है, यही है हमें वास्तविक बद्ध जीव का शत्रु कौन है, भय क्या है, बद्ध जीव के भीतर जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है यही वास्तविक भय है। अरे अर्जुन ने भी यही पूछा कि मेरा जो शत्रु कहाँ है, तो अर्जुन ने भगवान ने उनको जवाब दिए कि जो आपके भीतर जो काम है, बद्ध जीव के काम है, यही भय के रूप में आता है। काम के वजह से, भोग प्रवृत्ति के वजह से जब बद्ध जीव पाप करता है, तो पाप के कारण भय आती है। तो मैं बता रहा था क्या, महानिधि स्वामी तो बता रहे थे, तो ये रामायण की कथा था, तो बता रहे थे कि जब भगवान राम ने रावण को मार दिया, और मारने के बाद तो अयोध्या में आके पहुंचे, और जब लंका से आ रहे थे तो विभीषण को अपने साथ ले आए अयोध्या को, और विभीषण जी भगवान श्री राम के साथ आए, भगवान श्री राम का अभिषेक उस सब दर्शन किए, और विभीषण जब आ रहे थे उनके एक असिस्टेंट थे, तो वो असिस्टेंट को भी लेकर थे। तो विभीषण ने बोले ठीक है, मैं अयोध्या में और कुछ दिन रुकना चाहता हूँ भगवान के साथ, तो आप चले जाओ, लंका चले जाओ। तो विभीषण ने अपने असिस्टेंट को बोले, तो जाते जाते जाने के पहले विभीषण ने एक अस्वस्थ वृक्ष का पत्र लिए, और उस पत्र के ऊपर राम लिख दिए, श्री राम लिख दिए, लिख करके कपड़ा में लिपटा के वो उनके असिस्टेंट को दे दिए, ये चीज को संभाल के रखना और समुद्र पार होकर चले जाना, तो कोई प्रकार का भय आपको नहीं रहेगा, ऐसे बता करके विभीषण ने अपने असिस्टेंट को दे दिए। और विभीषण से उस चीज को लेकर तो समुद्र के किनारे पहुंचे और उनके अतिशन समुद्र के भीतर प्रवेश किए। और जितना अधिक अधिक समुद्र के और अधिक गहरे अधिक अधिक जा रहे हैं तो उनको भले समुद्र का पानी और सारे जगह में मतलब कितनी ऊंची है कितनी गहरा है, लेकिन उनके जो वो व्यक्ति जो जा रहा था तो उनको इतना ही है और वो चीज को संभाल रखा है। लेकिन वो व्यक्ति को पानी इतना है, समुद्र का पानी जितने अधिक जा रहे हैं उतने उतना पानी उतना ही है, पानी अधिक नहीं होती है, पानी उतना ही होती है। और वो अधिक 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 समुद्र के बीच में पहुंच गया पहुंच गया तो उस व्यक्ति सोचने लगा और समुद्र के कई अंदर में आ गया, लेकिन इतने पानी और चारों तरफ, लेकिन मैं ये इतना कैसे पानी है, तो ये है क्या, जो चीज मेरे साथ है वो चीज है क्या। तो वो देखने के लिए तो उन्होंने कपड़े को खोल करके देखा पत्ता को, तो लिखा है राम राम लिखा है। तो व्यक्ति ने संदेह हुआ, अच्छा केवल ये पत्ता के ऊपर जो राम लिखा है, ये राम क्या इस इतने अधिक समुद्र में इतने अधिक पानी से मुझे क्या बचा के रखा है। वो जो सोचा वो संदेह भाव से सोचा, उनका जो भावना की जो प्रवृत्ति है शुद्ध नहीं था, तो भावना जो वो अशुद्ध था। जैसे ही इतना सोचा ये राम मुझे बचाया, तो इतना ही सोचने मात्र से इतने तत्क्षणार इतने जोर से ऊपर पानी आया, उनको व्यक्ति को डुबा दिया, उधर ही डुबा दिया। कि उसी प्रकार ये भौतिक संसार के समुद्र की जैसे ही है, हमें यदि विश्वास करेंगे राम कृष्ण नाम ही मुझे ये भौतिक संसार के समुद्र से पार कर सकता है, जो व्यक्ति इतने ही पवित्र भाव से सोच लिया तो निश्चित रूप से राम कृष्ण रूपी जो वो उनको ये भौतिक संसार से उनको पार कर सकता है, राम कृष्ण नाम ही उनको पार कर सकता है। लेकिन यदि हमें ये नाम के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर हमें यहीं पर डूब जाएंगे, यहीं पर कई जन्मों से हमें डूब रहे हैं और ये जन्म में ही डूब करके ही रहेंगे। तो आसार के रूप में वसुदेव के जो वाणी है, वसुदेव की जो उपदेश, आज वसुदेव जो कह रहे हैं एक अंश तुम क्यों डर रहे हो, कि सत्य में जो व्यक्ति होता है तो उनको कोई डर नहीं रहता है, भक्ति में जो होता है उनको कोई डर नहीं रहता है। तो वसुदेव एक भक्त थे, अभक्त जो होता है हमेशा सत्य में रहता है, तो क्यों डर रहे हो, उनको कोई संसार के भले अपने भी कोई हो लेकिन जो अभी उन वसुदेव के साथ जो चीज है उनको संभालना, उनको प्रोडक्ट रक्षा देना उनका वर्तमान का कर्तव्य है। बाकी वसुदेव पिता होने के नाते उनका बच्चा को भी रक्षा देना उनका पिता का कर्तव्य है, लेकिन बच्चे अभी आए नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अभी जो देवकी है उनके उनके आश्रित है उनको रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। तो वर्तमान का कर्तव्य को मैं निभाऊं, बाद में जो बच्चे आएंगे उनको वो भी समय सोचा नहीं, बाद की बात बाद में दिखा। तो वर्तमान देवकी को बचाने के लिए तो उन्होंने क्या, क्यों डर रहे हो आप, इससे डर है ना, आप ही देवकी को डर रहे हो ना, तो देवकी आपका मृत्यु का कारण नहीं, उनके बच्चे हैं ना, तो चिंता नहीं करो, उनके जितने बच्चे होंगे मैं आपके हवाले कर दूंगा, आप डरो मत। तो यही डर से ये बौद्धि संसार भी, ये बौद्धि संसार में जो हमें डर है, ये डर से हमें पार करने के लिए एक बहुत बड़े आचार्य श्रीवास पंडित, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अति निकट पार्षद हैं, जिनके नाम लेने मात्र से ये संसार के पापों से हमें मुक्त हो जाते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति होती है ना, उनके श्रीवास पंडित प्रभु उनके नाम उनके दर्शन मात्र से ही भगवत प्राप्ति होती है। आज ऐसे श्रीवास पंडित प्रभु के अपीयरेंस प्रकट तिथि है, तो उनके प्रकट तिथि में यदि हमें केवल शुद्ध हृदय से हमें केवल मात्र स्मरण करेंगे उनको, तो उनके कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्रीवास प्रभु के आंगन को चैतन्य महाप्रभु चुने थे, ये संकीर्तन का बीज को बोए हुए थे, ये जो संकीर्तन आंगन का बीज को चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ बोए थे, कहाँ पर लगाए हुए थे, लगाए थे ना, श्रीवास के आंगन में। और श्रीवास के आंगन से ये संकीर्तन का बीज जो बोए थे चैतन्य महाप्रभु, वो इतना बड़ा वृक्ष बना, इतना बड़ा वृक्ष बना, ये वृक्ष का जो छाव है सारा जगत को आज दे रहा है, ये वृक्ष का छाव सारा जगत में विस्तारित होकर के सारा जगत वासी को वो सुरक्षा, एक प्रकार का आश्वासन, भौतिक कष्टों से भौतिक ताप से वो सुरक्षित कर रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु बात के अंदर है। हाँ, भगवान के नाम लेते हुए वो लुटपुट हो रहे थे, कभी हुंकार कर रहे थे, कभी जमीन में गिर रहे थे, कभी पटक रहे थे, खून खून हो जाते। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के नाम लेते खून खून हो जाते, अपने मुंह को घिस रहे थे, हाँ मिट्टी में, दीवाल में, हाँ इसी प्रकार अपने छाती को बिदा रहे थे। इस महाभाव के कारण भगवान कृष्ण के विरह से ऐसे अवस्था में अपने को पा रहे थे, वो खुद को जान नहीं पाए, खुद को ही समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे अवस्था में होकर जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के आंगन में ऐसे हो रहे थे, हाँ आरभ संकीर्तन के बाद भक्त लोग उनको स्नान कराते थे। जब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को स्नान कराते थे तो दुखी करके श्रीवास के श्रीवास के घर में के दासी है, वो चैतन्य महाप्रभु के स्नानार्थ थे, स्नान कराने के लिए वो रोज गंगा में जाते थे। हाँ, और मिट्टी के मटका कलश, वो कलश में पानी ढो ढो करके वो पंक्ति में लाइन में वो सजा करके रखती थी, वो दुखी करके के श्रीवास पंडित के घर में दासी। हाँ, ऐसे एक बार चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन संकीर्तन देख देते चैतन्य महाप्रभु उछल कूद करके जब नाचते थे, हाँ वो इतने खुशी हो जाते थे, वो दुखी इतना एक बार देखते देखते थे चैतन्य महाप्रभु कितने खुशी में नाच रहे, कितने खुशी में गा रहे, उनके चेहरे के आकर्षक, उनके शरीर का जो तेज, उनके मुख कमल से जो सौंदर्य, इतने मुग्ध कर रहा था, इतने मुग्ध कर रहा था, वो दौड़ते थे गंगा में दौड़ते थे और पानी ढो ढो करके चैतन्य महाप्रभु का स्नान के लिए वो ला करके लाइन में वो सजा करके रखते थे। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन कर लेते थे तो भक्त लोग उनको वो दुखी के द्वारा जो गंगा का पानी, हाँ वो पानी के द्वारा, वो जल के द्वारा उनका अभिषेक करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु पूछे श्रीवास को कि श्रीवास ये इतने पानी ढो ढो करके कौन लेके आ रहा है यहाँ पे। तो श्रीवास प्रभु बोले कि प्रभु मेरे घर में जो दासी मेरे घर में जो दुखी करके के है तो वही ही आपके लिए ये गंगा का जल को लेकर के रोज आया करती है। हाँ, तो जैसे सोने चैतन्य महाप्रभु कि दुखी करके उनके घर के जो दासी है उनके लिए वो जल को लेकर के आ रही है, तुरंत चैतन्य महाप्रभु के मुंह से निकल पड़ा, आज से हाँ वो दुखी नहीं है, आज से वो सुखी है, आज से उनको सुखी कर करके पुकारो, आज से उनको कोई दुखी नहीं कहना। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पुण्य, हाँ जो करुणा भरी जो वाणी सुन करके वहां पर उपस्थित सारे भक्तों ने हरी बोल हरी बोल हरी बोल ऐसे करने लगे। और हाँ, श्रीवास प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतने आसक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के चरण के प्रति इतने उनका लगाव थी, हाँ तो वो ग्रस्त जीवन में इतने विरक्त थे। एक बार वो चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कीर्तन कर रहे थे तो श्रीवास प्रभु के घर में श्रीवास प्रभु के चार भाई थे, हाँ तो चार भाइयों का एक ही पुत्र था। और श्रीवास प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में हुए थे तो ठीक उसी समय श्रीवास पंडित के जो एक ही पुत्र थे घर के भीतर उनका मृत्यु हो गई, तो उनको कुछ बीमार था, रोग था, तो रोग के कारण उनका मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हो गई थी तो अंदर के जो माँ लोग माता जी लोग है माँ उनके माँ लोग है वो जोर जोर से रो रही थी। हाँ, ये रोने की आवाज जब श्रीवास के कान में पहुंचा तो तुरंत तो दौड़ करके घर के अंदर गए। अब घर के अंदर जब गए देखें उनका एक ही पुत्र जो था वो उसका मृत्यु देहांत तो हो गई है। तो थोड़े समय से देखकर तो वो तो तत्व ज्ञानी थे, वो भगवान के भक्त थे, तो ये संसार के लेने देने में उनका कुछ मतलब ही नहीं था, तो कौन पुत्र कौन ये सब के इतना कोई वो एकदम परे थे। तो वो थोड़े समय देखें हाँ ठीक है, हाँ तो उपस्थित वहां पे जो माता जी लोग थे स्त्री लोग थे उनको समझाए देखो हाँ आपके रोने की आवाज यदि महाप्रभु के कान में पहुंचेगा तो फिर महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में जो अभी वो आनंद ले रहे हैं तो आनंद से उनको रुकावट होगा, वो आनंद से वो वंचित हो जाएंगे, तो कृपा करके ये रोना धोना अभी आप बंद करो। हाँ, यदि आप रोना धोना बंद नहीं करोगे तो रोना धोना बंद नहीं करोगे मैं सीधा गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। आशीर्वाद प्रभु के मुख से जब इस प्रकार का सुने तो सारे माता जी लोग जो रो रही थी सारे बंद हो गए। और श्रीवास्तव उनको ये बात भी समझाएं कि देखो तुम लोग चिंता नहीं करो और खुशी होना चाहिए, जिसके घर के जिसके घर के आंगन स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, इतने खुशी आनंद कर रहे हैं, तो उनके संकीर्तन आंदोलन के समय, उनके संकीर्तन करते ही समय ये पुत्र का मृत्यु हुआ। महाप्रभु के भगवान महाप्रभु के मुख कमल से जो भगवान का नाम निकल रही है वो नाम को सुनते सुनते पुत्र का मृत्यु हुआ। तो ये पुत्र क्या भाग्य क्या है, ये ऐसा भाग्य तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे ऐसे भाग्य दें कि प्रभु के नाम श्रवण करते करते मेरा शरीर छूट जाए। तो आप लोग खुशी मनाना चाहिए कि ऐसे परिवेश के भीतर, ऐसे माहौल के भीतर ये पुत्रों का देहांत तो हुई है, तो इससे हमें खुशी करना चाहिए, उल्टे आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो, दुखी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार समझा करके श्रीवास्तव घर के बाहर आ गए और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में शामिल हो गए और वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य कीर्तन में कर रहे थे। तो लेकिन श्रीवास्तव को तो ये सब मामले में कुछ दुख नहीं हो रहा था, लेकिन श्रीवास्तव के साथ और जो भक्त थे वो दुखी हो गए। बाकी जो भक्त लोग थे कि एक ही पुत्र था, उनका मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके कुछ नहीं है, वो आके महाप्रभु को खुश देने, खुशी करने के लिए तो इस प्रकार का जो लगा हुआ है, तो सारे भक्तों को दुख हुआ और बाकी भक्तों को। तो धीरे धीरे फिर चैतन्य महाप्रभु कह पड़े, श्रीवास अपने आनंद मुझे क्यों नहीं आ रहा है, ये संकीर्तन से मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है। जब कहें तो बाकी भक्तों लोगों को रहा नहीं गया और अपने को संभाल नहीं पाए, तो महाप्रभु कह दिए कि प्रभु श्रीवास के जो एक ही पुत्र था उनका देहांत हो गया। तब जब सुने चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के एक ही पुत्र था उनका मृत्यु हो गई है, तो महाप्रभु बोले कब से, कितने समय से ये सब हो गया है। तो रात्रि का 4 प्रहर के पहले ये घटना घट गई है। तो लेकिन मुझे ये बात, श्रीवास आपका पुत्र का मृत्यु हो गई है लेकिन मुझे आपने ये बात नहीं बताया नहीं। तो श्रीवास प्रभु बोले कि प्रभु आपका नृत्य कीर्तन से जो आनंद है आपको जो मिल रही है, ये आनंद से आप वंचित हो गए, इसी के कारण से मैं आपको ये बात को नहीं कहा। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु हुंकार करके उठे, श्रीवास तुमने क्या कहा क्या कहा, तो मैं ऐसे भक्तों को छोड़ करके मैं कैसे मैं जाऊं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के मुंह से सुने, मैं ऐसे भक्तों को कैसे मैं त्यागूं, ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ूं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कह दिए, तो सारे भक्तों के हृदय के डर हो गया। तो समझ गए कि अभी तो चैतन्य महाप्रभु हम सबको छोड़ के जाने वाले हैं, अभी तो वो गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास लेने वाले हैं। तो सारे भक्तों ने दुखी होकर रोने लगे, और चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के भीतर उनके प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, ये प्रेम को स्मरण करते करते वो अधिक अधिक फूट फूट करके रोने लगे। रो करके फिर तो घर के अंदर गए और जाकर के देखें श्रीवास प्रभु के जो पुत्र है वो मर चुका है, मर गया, मृत्यु हो गया। और उन लेके जाने वाले थे तो मृत पुत्र को चैतन्य महाप्रभु कहें, अरे तुम्हें पंडित का घर को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये श्रीवास के घर को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इतने ही कहें तो पुत्र मर गया था, मृत्यु हो गया था, वो तुरंत जीवित हो गया और जीवित होकर के बड़े ही तत्व की बात कहने लगा, मेरे कर्म के वजह से ये पंडित के घर में मुझे जितना दिन रहना था हो गया, मेरे कर्म के वजह से ये श्रीवास के घर में मुझे जितना रोकना था मेरा समय हो गया, मैं और किधर जाना है, और कहां पर मुझे जन्म लेना है, तो फिर मुझे जाना है। कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है, ये लोग जो रो रहे हैं, ये कितने जन्मों का पिता है, कौन सा जन्म का पिता माता है, ये कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है। इस प्रकार का जब मरे हुए पुत्र जीवित होकर के ये जो ये बात कहने लगा, तो वो पुत्र के लिए जो लोग रह रहे थे वो हक्का बक्का देख रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, ये मर गया था, ये मरा हुआ जिंदा हो करके इतना तत्ववाणी बोल रहा है, इतनी ऊंची वाणी कह रहा है। तो सारे के भीतर जो बाकी लोगों के भीतर जो उनके प्रति लगाव था वो तुरंत वो पुत्र के प्रति विरक्त हो गए। अभिरक्त जब हो गए वो पुत्र इतना ही बोल करके फिर वो मर गया। जब मर गया, मृत्यु हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु बाकी भक्त लोग उनको गंगा के किनारे ले गए और लेकर के वहां पर उनका दाह संस्कार किए और करने के बाद हाँ चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु श्रीवास प्रभु को बोले कि श्रीवास आज से और ये नित्यानंद और मैं आपका दोनों पुत्र हैं, आपका एक ही पुत्र आप खो रहे ना, एक ही प्रकार मृत्यु हुआ ना, आज से ये नित्यानंद और मैं हम दोनों आपके पुत्र हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु इतने ही कहे श्रीवास प्रभु को, आज श्रीवास प्रभु तो सीधे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में गिर पड़े और रोने लगे चैतन्य महाप्रभु चरण कमल को पकड़ करके। हाँ प्रभु इतना ही कृपा कीजिए, बस इतना ही कृपा कर दीजिए, जो चरण कमल को आज पकड़ रखा हूँ वो चरण कमल को कभी ना भूल, बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए, ये चरण कमल को मैं कभी ना भूल। ये था श्रीवास प्रभु के चैतन्य महाप्रभु के प्रति अतूट जो गंभीर जो सही जो प्रेम है। हाँ ये प्रेम और श्रीवास प्रभु के घर में ज्यादातर नित्यानंद प्रभु अनेक अनेक लीला करते थे। और नित्यानंद प्रभु जब श्रीवास प्रभु के घर में रह रहे थे, लीला कर रहे थे, उनका पत्नी जो थी मालिनी देवी उनके सामने नित्यानंद प्रभु उस समय हालांकि 32 साल के थे, लेकिन एक बच्चा जब माँ के सामने नंगा धंगा घूमता है उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के जो पत्नी थी मालिनी देवी उनके सामने नित्यानंद प्रभु ऐसे नंगा घूमते थे, हालांकि थे 32 साल के, इसीलिए उनको अवधूत कहा जाता है। अच्छा चैतन्य महाप्रभु उनको कितना बार भी रोके, अरे आप नित्यानंद आप क्या कर रहे हो, ये गृहस्थ का घर है। कभी कभी तो चैतन्य महाप्रभु घर में सची माता विष्णु प्रिया के सामने नित्यानंद प्रभु ऐसे वो अपने पहने हुए कपड़े को अपने यहाँ से निकालकर यहाँ बांध देते थे, तब यहाँ से निकल के यहाँ बांध देते थे तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे अरे नित्यानंद तुम क्या कर रहे हो, ये गृहस्थ का घर है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ है, तुम क्या कर रहे हो। तो वो जबरदस्ती अपने सर से कपड़ा को ला करके फिर यहाँ पर जो लिपटा बांध देते थे, नित्यानंद प्रभु फिर उधर से सर करके निकाल करके वो फेंक देते थे। ऐसे वो नित्यानंद प्रभु का अद्भुत लीला वो करते थे श्रीवास पंडित के घर में भी। हाँ जब इस प्रकार का कर रहे थे तो मालिनी देवी माली नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार का लीला को देख करके मालिनी देवी के हृदय की तो बात्सल्य रस उभरता था। नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार लीला देख करके भले वो समय अति वृद्ध हो चुके थे, मालिनी देवी अति वृद्ध हो चुके थे, लेकिन बात्सल्य रस को बात्सल्य रस के कारण मालिनी देवी जैसे वृद्धा के सोनों में नित्यानंद प्रभु की दूर उबक रहा था, वो उब रहा था। और नित्यानंद प्रभु वो वृद्धा मालिनी देवी के पान पान भी कर रहे थे, थे बत्तीस साल के, लेकिन 32 में होते हुए भी वो बात्सल्य रस सारे सामने बता देने के लिए, मालिनी देवी का जो बात्सल्य रस है वही बात को सारा जगत को कह देने के लिए जाकर के वो स्तनपान कर रहे थे। और एक बार चैतन्य महाप्रभु पूछे श्रीवास ये भिखारियों को क्यों आपके घर में रखे हो, ये भिखारी आप ये पंडित हो, आप ये ब्राह्मण हो, समाज में आपका मर्यादा है, नाम है, तो ये पंडित होकर के ये भिखारी ऐसे लोगों को फक्कड़ ये अवधूतों को क्यों रख रहे हो, क्योंकि नित्यानंद तो हमेशा अभी अवधूत लीला करते थे, अवधूतों को क्यों रख रहे हो। तो ये बात जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास प्रभु को कहे तो श्रीवास प्रभु कहे तुरंत कह दिए प्रभु ये अभाव है, ये तुच्छ भक्त को आप इस प्रकार का परीक्षा तुच्छ भक्त भक्त के लिए इस प्रकार का परीक्षा क्यों ले रहे हो, ये भक्त के प्रति आप इस प्रकार का परीक्षा क्यों ले रहे हो, परीक्षा क्यों कर रहे हो। तो नित्यानंद भले भी शराब का दुकान में चले जाए, हाथ में शराब का बोतल पकड़ ले और ऐसे गंदे स्त्रियों के साथ में भी हो जाए, फिर भी नित्यानंद के चरण के प्रति मैं थोड़े इतना सा भी विश्वास नहीं हिल सकता है, थोड़ा इतना ही विश्वास मेरे नित्यानंद के चरण कमल से हिल नहीं सकता। जैसे ही श्रीवास ने इतना ही कह दिया तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के मुख से ये सुन करके एकदम हुंकार से श्रीवास तुमने क्या कहा, नित्यानंद को ही आप ही पहचाने हो, नित्यानंद के प्रति आपका इतना विश्वास है, नित्यानंद को आप ही पहचाने हो, इस प्रकार कह करके चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को आलिंगन करने लगे। ये था श्रीवास प्रभु के चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनेक इस प्रकार का लीला में भी हो गया है। और आप लोग सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद नर्सरी श्रीवास के सास के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किए थे चैतन्य महाप्रभु के कारण से। और श्रीवास के घर में जो चार भाई थे वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे थे, केवल हरि नाम कर रहे थे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु पूछे थे, आपका घर गुजरान कैसे चलता है? तो हमेशा आप यही कर रहे हो, आप घर कुटुंब का कैसे पोषण भरण पोषण कैसे हो रही है? हाँ, तो उसके जवाब में चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न के जवाब देते हुए ये श्रीवास प्रभु तीन बार करताल पीटे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहे, अरे मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम दिन रात हरिनाम कर रहे हो, हाँ, लेकिन आपका घर, आप गृहस्थ हो, आपका घर पेट पाटना कैसे चलती है? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ताली क्यों पीट रहे हो? हाँ, ये ताली पीटने का मतलब क्या है? तो उसके जवाब में कहे थे श्रीवास प्रभु, प्रभु एक दिन अपेक्षा करूंगा, कुछ नहीं आएगा तो सहन कर लूंगा, दूसरा दिन कुछ नहीं आएगा तो नहीं आएगा सहन कर जाऊंगा, तीसरा दिन भी कुछ नहीं आएगा तो तीसरा दिन अपेक्षा करने के बाद ये कुछ नहीं आएगा, सीधा गले में बालू का मटका बांध करके मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। जैसे श्रीवास प्रभु इतना ही कहें तो चैतन्य महाप्रभु एकदम कूद उठे, उड़ करके कहने लगे, श्रीवास तुमने क्या कहा, गंगा में प्रवेश कर जाओगे? हाँ, समय ऐसे आए लक्ष्मी कटोरा लेकर के घर घर में भीख मांगना पड़े, लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, लेकिन आपके घर में कभी भी अन्न पानी का कमी नहीं रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा बर है। हाँ, लक्ष्मी को ऐसे समय आए, लक्ष्मी को द्वारस्थ होना पड़े, लेकिन आपका घर घर में कभी भी अन्न पानी का कमी नहीं रहेगा। और ये आपके मेरा ये भी आशीर्वाद है, आप नहीं, आपके घर में कुत्ते बिल्ली भी मेरे चरण कमल के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न करेंगे, आपके घर में कुत्ते बिल्ली भी मेरा शुद्ध भक्त रहेंगे। तो ये था चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास के अंतरंग गुह्य लीला। ये जो भगवान भक्तों के भीतर जो गुह्य गुप्त छुपा हुआ लीला होती है, वो लीला केवल इसीलिए होती है सारे बद्ध जीव को भगवद्धाम पहुंचाने का एक खुराक प्रदान करती है, एक प्रकार की हिम्मत प्रदान करती है। जो चाहे भक्त और भगवान का लीला को हमें दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो श्रवण से हमारे हृदय में जो अनर्थ है, बद्ध जीव के भीतर जो काम भोगने की जो प्रवृत्ति है, तुरंत उनका कुल्हाड़ी जैसे काम करता है, वो तुरंत उनका पुण्यच्छेद होती है। तो आज के दिन में श्रीवास प्रभु और ये चैतन्य महाप्रभु के हमें लीला को हमारे हृदय में बिठा लेंगे, मन में स्मरण करेंगे, आशा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है हमें भगवत धाम पहुंचने का, तो भरोसा मिलती है, हमारे हृदय से भरोसा पहुंचती है भगवत धाम पहुंचने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्रीवास पंडित प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, हृदय गौर प्रेमानंदे।
लगा है तो था लेकिन उल्टा।